माधव जी, आप अपनी वाइफ की तस्वीर नहीं दिखाएंगे मुझे? बातों बातों में राधिका ने ये फरमाइश कर दी, जिसे सुनकर माधव पल भर को चौंक गया। फिर जरा झिझकते हुए बोला, हमारा रिश्ता तो सालों पहले टूट गया, अब वो मेरी वाइफ नहीं, तो आप उसकी तस्वीर देखकर क्या करेंगी? बस देखना है मुझे उस लड़की को जिसका रिश्ता आपसे जुड़ा था और जिसे कुछ वक्त के लिए ही सही आपकी जीवनसाथी कहलाने का सौभाग्य मिला था। एक कसक सी उठी थी मन में और आवाज में एक अनकहा सा दर्द छलकने लगा था। अधूरी ख्वाहिशों की तीस उठी थी दिल में। पल भर को माधव ने गहन दृष्टि उस पर डाली, फिर अपना फोन निकालकर कुछ सेकंड कुछ तलाशने के बाद स्क्रीन उसकी ओर घुमा दी। राधिका ने बेताबी दिखाते हुए झट से फोन थाम लिया और जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर झलकती तस्वीर पर पड़ी, उसके लब प्रशंसा से मुस्कुरा उठे। आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर थी, आज भी सुंदर ही है, बस अब मेरी वाइफ नहीं। माधव ने सहजता से उसकी गलती सुधारी और राधिका ने सक पकाते हुए उसे देखा। ओह सॉरी, मेरा मतलब था कि आपकी एक्स वाइफ काफी सुंदर है और पर्सनैलिटी भी अच्छी है। माधव बस भीखा सा मुस्कुरा कर रह गया। शायद उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द, उदासी, मायूसी और खामोश शिकायत को पढ़ चुका था वो। अब आप मुझे अपने हस्बैंड की कोई फोटो दिखाइए, मैं भी उस इंसान को देखना चाहती हूँ जिसको आप जैसी सुलझी हुई समझदार लड़की की कदर नहीं हुई। राधिका के चेहरे पर अजीब सी उदासी सी छा गई। मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं। माधव पल भर उसके उदासी भरे मायूस चेहरे को देखता रहा, फिर उसने गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए संजीदगी से सवाल किया, राधिका, आपको अगर अपनी शादीशुदा लाइफ को अगर एक शब्द में परिभाषित करने कहा जाए तो क्या करेंगी आप? समझौता। और आप? बिना एक पल गवाए राधिका ने जवाब भी दिया और साथ ही माधव से सवाल भी कर लिया, संघर्ष। क्यों? राधिका ने तुरंत ही सवाल किया। उसकी आंखों में जानने की जिज्ञासा देखकर माधव ने आज इस बारे में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहना शुरू किया, शादी को दो इंसानों नहीं, दो परिवारों का, दो दिलों का बंधन कहा जाता है। मेरी सुमन से शादी मेरी इच्छा से नहीं हुई थी, वो मेरे परिवार की पसंद थी और वो शादी भी उन्हीं की मर्जी से हुई थी। जबकि सुमन की तरफ से सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी, उसे मैं पसंद आया था जबकि उसकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। ये तो मैं भी नहीं जानता कि मुझसे हुई चंद मिनटों की एक मुलाकात और हमारे बीच हुई चंद बातों में उसे मुझमें ऐसा क्या नजर आया कि अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया। मेरी फैमिली ने उसे दिल से एक्सेप्ट किया पर मैं नहीं कर सका। उस वक्त मेरा दिल नहीं जुड़ा था उससे और ना ही मेरे मन में उसके लिए कोई भावना और एहसास थे। उस शादी के लिए दिल में कोई उत्साह भी नहीं था। शादी हुई तो मुझे उस रिश्ते को अपनाने में कुछ वक्त लग गया। सुमन मुझसे जो चाहती थी मैं उसे नहीं दे सका, पर धीरे धीरे मैंने उस रिश्ते को अपनाकर उसे निभाना शुरू कर दिया और कोशिश करने लगा उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने और उसे खुश रखने की। पर मैं इसमें बुरी तरह नाकामयाब रहा। कोशिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी पर सुमन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। जो वो मुझसे चाहती थी वो उसे नहीं दे सका और आखिर में वो मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा क्या चाहती थी वो आपसे? वो चाहती थी कि मैं जो काम कर रहा था उस वक्त वो छोड़ दूं, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को मुझसे मिलाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ अलग हो जाऊं ताकि मेरा सारा वक्त और अटेंशन उसे मिले और वो अपनी तरीके से जिंदगी बिता सके। और भी छोटी मोटी बातें थीं जिसकी वजह से पहले हमारे बीच लड़ाइयाँ शुरू हुई, रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर हम समझ गए कि हमारा एक साथ रह पाना मुमकिन नहीं है, हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं और हमने उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दिया। आपको कभी अफसोस या दुख नहीं होता कि आपने उस रिश्ते में इतने एफर्ट्स लगाए जो अंत में टूट गया? अफसोस कैसा, हम इंसान हैं, जो भी रिश्ता हमसे जुड़ता है उसे निभाने के लिए हमें एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं, तभी तो रिश्ते चलते हैं। जब मेरी सुमन से शादी हुई तो मैंने भी उस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उस रिश्ते के नसीब में टूटना ही लिखा था, सो टूट गया। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का सुकून है कि मैंने अपने तरह से हर मुमकिन कोशिश की थी उस रिश्ते को बचाने और निभाने की। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं शुरू से ही सुमन के काबिल नहीं था, इसीलिए ना मुझे उससे कोई शिकायत है, ना खुद से और ना अपनी किस्मत से, क्योंकि अगर वो रिश्ता टूटा तो उसमें मेरा भी भला ही हुआ। माधव ने तो बिना झिझक सहजता से उसके हर सवाल का जवाब दिया, सब तो नहीं पर अपने अतीत से जुड़ी कुछ बातें उससे शेयर की। उसका जवाब सुनने के बाद राधिका कहीं खोई खोई सी लगी। समझौता क्यों? माधव ने पल भर ठहरते हुए सवाल किया। राधिका ने चौंकते हुए निगाहें माधव की ओर घुमाई तो वो चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रहा था। राधिका ज्यादा देर तक उसकी निगाहों का सामना न कर सकी, कुछ पन सुनी निगाहों से टेबल पर रखे बाउल को घूरती रही। फिर ठंडी आह भरते हुए उसने कहना शुरू किया, समझौता, क्योंकि उस रिश्ते में जितने वक्त रही मैंने सिर्फ और सिर्फ समझौता किया। समझौता अपने सपनों से, अपनी ख्वाहिशों और चाहतों से, समझौता अपनी उम्मीदों से, समझौता अपने आदर्शों और सिद्धांतों से, समझौता खुद से जुड़े रिश्तों और अपनी खुशियों से, समझौता अपने सुकून और दर्द से, समझौता अपनी आज़ादी से, समझौता अपनी इज्जत और मर्जी के साथ, समझौता अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान से, समझौता अपनी किस्मत और ज़िंदगी से, समझौता अपने वजूद से। और हैरानी की बात यह है कि उस रिश्ते में समझौता सिर्फ मैंने ही किया, हर पल हर कदम पर सिर्फ मैंने ही समझौता किया। राधिका का गला भर आ गया था और आंखें झिलमिला उठी थीं। उस रिश्ते से जुड़ी कुछ बुरी यादें उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी थी। माधव उसके चेहरे पर छलकते दर्द और बेबसी को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किस तरह की शादीशुदा जिंदगी बिताई है उसने कि सालों बाद भी इस कदर दर्द और तकलीफ में है। पर अफसोस कि वो चाहकर भी राधिका के दर्द का अंदाजा न लगा सका, पर उसे कमजोर भी नहीं पड़ने दिया। राधिका, एक बात कहूं अगर आप बुरा न माने तो? माधव की आवाज राधिका के कानों से टकराई तो किसी तरह अपने बिखरे जख्मी वजूद को संभालते हुए उसने झूठी मुस्कान अपने लबों पर सजा ली। ये मेरा विश्वास है कि आपने भी उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की होगी, पर अगर वो रिश्ता फिर भी टूट गया तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और ना ही इसका ये मतलब है कि आप उस रिश्ते को निभाने में चूक गईं। उस रिश्ते के नसीब में उतनी ही उम्र लिखी होगी और उसके टूटने में भी आपकी भलाई छुपी थी। अगर वाकई उस रिश्ते में आपको अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ा तो उसका टूटना ही सही था। माधव शायद उसे दिलासा देते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर राधिका फीका सा मुस्कुरा दी। जानती हूँ, और मुझे इस बात का दुख भी नहीं। अब उस शख्स की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, वो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं है। पर जब जब उसका जिक्र होता है मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं एक रिश्ते को बचाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर गई, कैसे उस रिश्ते को बचाने के लिए अपने स्वाभिमान तक को दाव पर लगा दिया जिसमें मेरा कोई वजूद ही नहीं था, कैसे उस शख्स के लिए खुद को भुला दिया, अपने सपनों ख्वाहिशों सबकी बलि चढ़ा दी जिसकी नज़रों में मेरी कभी कोई अहमियत ही नहीं रही। मुझे पछतावा या अफसोस इस बात का नहीं कि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी वो रिश्ता टूट गया, बल्कि इस बात का है कि मैंने उस शख्स के लिए खुद के साथ इतनी ज्यादती कर दी जो मुझे डिजर्व तक नहीं करता था। मुझे उस रिश्ते के टूटने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने फैसले पर आज भी गर्व है कि मैंने अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को चुना और उस जैसे टॉक्सिक और खुदगर्ज आदमी के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया।
ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब खुद से भी नाराजगी छोड़ दीजिए। भले ही उस वक्त आपने जो किया वो ठीक ना हो, पर हम इंसानों की फितरत होती है, जब तक मुमकिन होता है किसी भी रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, अपनी आखिरी हद तक जाते हैं। वजह चाहे हम खुद हों, हमारे परिवार की खुशी हो या फिर समाज का दबाव। आपने भी बस वही किया जो उस वक्त करना जरूरी था, ताकि कल को आपके मन में ये भावना पनपे कि कमी आपकी ओर से रही, आप उस रिश्ते को निभाने में चूक गईं। पर क्या फायदा इतना सब करने का भी, जब रिश्ता टूटा तो सारा ब्लेम तो मुझ पर ही आया। सही कहती थी माँ, आदमी चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर ले, पर ये समाज और यहाँ रहने वाले लोग दोष सिर्फ औरतों को ही देते हैं, कमी उनमें ही निकाली जाती है। मर्द से कोई सवाल नहीं करता, उसे कोई दोष नहीं देता। समाज का काम है कहना, उनकी बातों को दिल पर क्या लेना। फर्क तो हमें खुद से और हमारे अपनों से पड़ना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हम सही हैं, हमारा परिवार हमारे अपने हमारे साथ हैं, तो ये गूंगा बहरा अंधा दिमाग से अपंग समाज क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या कहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका कुछ पल टकटकी लगाए उसे देखती रही। उसकी आंखें सुर्ख रंग में रंगी थीं और उन बड़ी बड़ी आंखों में गुलाबी पानी तैर रहा था। आप पूछेंगे नहीं मुझसे कि मैंने डिवोर्स क्यों फाइल किया? नहीं, ये सवाल जरूरी नहीं। जरूरी ये बात है कि आप उस रिश्ते में खुश नहीं थीं, आपने फिर भी उसे निभाने की पूरी कोशिश की और आखिर में खुद के साथ और ज्यादती व अत्याचार ना करते हुए खुद को उस रिश्ते की बेड़ियों से आज़ाद कर लिया। माधव का जवाब सुनकर राधिका की आंखें छलक आईं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मर जाती, कभी खुद को भी फेस नहीं कर पाती, मेरा वजूद मिट जाता। माधव उठकर उसके पास चला आया और अपना स्नेह भरा हाथ उसके सर पर रख दिया। मुझे गर्व है आप पर कि आपने हिम्मत दिखाते हुए बिना समाज से डरे, बिना किसी के दबाव में आए, अपने लिए सही फैसला लिया। राधिका ने सर उठाकर छिलमिलाती आंखों से उसे देखा और उन्धे स्वर में धीरे से बोली, मैं कभी किसी से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकी, समझ सकता हूँ मैं। जिस लड़की पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी उसे कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं रही होगी, और घर में जो जिम्मेदार बच्चे होते हैं उन्हें अपना दर्द अपनी तकलीफ छुपाकर किसी भी तरह खुद को संभालना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर उसका पूरा परिवार निर्भर करता है, और अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए वो अपनी भावनाओं तक को खुलकर बाहर जाहिर नहीं कर पाता। तभी तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता था कि मेरे रूप में आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिसके साथ आप खुश होने पर मुस्कुरा सकती है, तकलीफ पर रोकर अपना मन हल्का कर सकती है, अपना दर्द बांट सकती है और अपने दिल की बात बेझिझक कह सकती है, क्योंकि मैं आपको जज नहीं करूंगा, आपको कमजोर होकर बिखरने भी नहीं दूंगा, हर सिचुएशन में आपको संभाल लूंगा, और यही उम्मीद मुझे आपसे भी है। वो रिश्ता मेरी रूह पर इतना गहरा जख्म देकर गया है कि शायद मेरी सारी जिंदगी भी उन जख्मों को भरने के लिए कम पड़ जाएगी। नहीं, अगर कोई अपना अपने प्यार और अपनेपन का मरहम उन जख्मों पर लगाए तो वो जख्म भी भर जाएगा और आपको इस दर्द और तकलीफ से हमेशा के लिए निजात भी मिल जाएगा। परेशानी बस ये थी कि अब तक आप उन जख्मों को सबसे छुपा कर रखती आ रही थी जिससे वो जख्म नासूर बनने लगा था, पर अब जब आपने हिम्मत करके उन जख्मों का जिक्र मेरे सामने कर ही दिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस दर्द और तकलीफ से राहत पहुंचाने की। भीगी निगाहों से एकटक माधव को देख रही थी। उसका दिल उसके विश्वास पर विश्वास करना चाहता था। माधव के शब्द उसके दिल की गहराइयों में समाते लगे थे और उन शब्दों में झलकता अपनापन और एहसासों की गर्माहट उसकी जख्मी रूह को सुकून पहुंचा रहे थे। ये एहसास खुद में बेहद खास था कि अब वो इस दर्द में तन्हा नहीं, कोई है जो उसके साथ खड़ा है, जिससे वो बेझिझक अपने दिल की हर बात कह सकती है, जो उसे समझता है और उसे संभालना चाहता है। टू बी कंटिन्यूड।